रजनीश कुमार यादव की आवाज़ में महादेवी वर्मा के कविता के अगला शीर्षक है वो पागल संसार। कवित्री कह रही है कि हे पागल संसार, तू यद्यपि निराशा और व्यथा के अंधकार से पूर्ण है, परंतु यह वेदना ही हृदय की करुणा को शीतलता प्रदान करती है। यहाँ स्मरणीय है कि मधुर एवं कंठा भावों का जन्म व्यथापूर्ण हृदय में ही होता है, और यही कारण है कि इन पंक्तियों में पागल संसार को शीतल तममय कहा गया है। कवित्री पागल संसार से कहती है कि तू तो केवल जलने का उपहार प्रिय से माँ, क्योंकि पतंगा हमेशा दीपशिखा का चुंबन करता है और क्षण भर में ही वह स्वयं ज्वालामय हो जाता है, अर्थात जलकर राख हो जाता है। कवित्री का कहना है कि दीपक अवश्य ही स्वयं जलता है, पर जलकर ही वह चारों ओर प्रकाश देने में समर्थ होता है। कवित्री कहती है कि हे पागल संसार, प्रेम की ज्वाला बहुत तीव्र होती है और तुझे हमेशा ध्यान में रखना होगा कि तू एकाकी ही अच्छा है, क्योंकि यदि तू प्रेम के समीप आवेगा तो तुझे नष्ट हो जाना पड़ेगा। अतः अपने आप को जल जाने के लिए तैयार होकर ही तुझे प्रेम मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। इन पंक्तियों में कवित्री ने प्रेम से अभिप्राय आत्मबलिदान का ग्रहण किया है और वह आत्मबलिदान को ही प्रेम का सार भी मानती हैं। इसलिए वह पागल संसार से यह कहती हैं कि उसे प्रेम करते समय दीपक की ज्वाला से भस्म होने वाले पतंगे का आदर्श ग्रहण करना चाहिए। कवित्री कहती है कि हे पागल संसार, यदि तू प्रेम ज्वाला में जलता रहेगा तभी उज्ज्वल प्रकाश से तू पूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें जलना ही प्रकाश अर्थात यश पाना है, और प्रेम में बुझना या प्रेम का घटना तो अंधकार है, तथा अंधकार का दूसरा नाम है दुख है। कवित्री का कहना है कि प्रणय ज्वाला में जलने का नाम ही सुख है, और प्रिय प्रेम स्वरूप होने के कारण हमेशा प्रेम की ज्वाला से पूर्ण रहता है। कवित्री कह रही है कि इस पागल संसार में हमेशा दुख विद्यमान रहा है और मैं प्रेम का रसास्वादन चाहती हूँ, अर्थात प्रेम के सुख का उपभोग करना चाहती हूँ, अतः मुझे चिर सुख ही है। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह भी ग्रहण किया जा सकता है कि कवित्री को प्रिय का चिर वियोग है और पीड़ा ही में सुख होने के कारण कवित्री वेदना से परिपूर्ण होने से चिर सुख का अनुभव कर रही हैं तथा पीड़ा अभाव को दुख मानती हैं, साथ ही वह प्रियतम को आनंद स्वरूप मानने के कारण उसमें चिर दुख का अनुभव करती हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में हमें अत्यंत सुंदर विरोधाभास के दर्शन होते हैं। कवित्री का कहना है कि पतंगा तो दीपशिखा से स्वयं ही जाकर मिलता है, अतः वह आभायुक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो स्वयं ही झुलस जाता है। कवित्री कह रही है कि अपने छोटे से छोटे तन से पतंगा भला नवीन ज्योति का प्रसार कैसे कर सकेगा, क्योंकि आत्मा प्रियतम से पूर्ण प्रेम के लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व ही ह्रास को प्राप्त होती है। कवित्री कहती है कि हे पागल संसार, तू अपने जीवन दीप को मृदुतर बनाकर उसमें अपने स्नेह सिंचित उर की बाती को लगाकर हंस हंस कर जल, क्योंकि इसमें तुझे अपूर्व शोभा या आभा प्राप्त होगी। इन पंक्तियों में कवित्री ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि भगवान आनंद स्वरूप है और आत्मा की परमात्मा का अंश होने में आनंद स्वरूप ही है, पर भगवान के वियोग में आत्मा चिर दुखी है और उसके लिए यह चिर दुखी ही घिर सुख हुआ है। समीक्षा: निर्जा के इस कविता में अत्यंत मार्मिक का विचित्र व्यंजना है और कवित्री ने यही स्पष्ट करना चाहा है कि उसे वेदना ही प्रिय है, यही कारण है कि वह जलने का वरदान मांगती है, और उसका कहना है कि वियोग में प्रेम का आभामय रूप निखरता है तथा विरह से प्रेम भी करती है। इस प्रकार निर्जा की इस कविता में सरल शब्दावली में ही प्रणय एवं विरह की सार्थकता स्पष्ट की गई है, और यहाँ यह स्मरणीय है कि वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक आइसन में विशिष्ट भाषा का विरोध करते हुए कवि की विचारधारा सामान्य मनुष्यों के अनुरूप होने की बात कही है। द पोएट थिंक्स एंड फील्स इन द स्पिरिट्स ऑफ ह्यूमन पैशन, वाई शुड देन हिज लैंग्वेज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर मैन हु थिंक एंड फील इन द सेम वे। श्री मैथिली शरणगुप्त की निम्नलिखित कविता में भी प्रेम में आत्मबलिदान की महत्ता स्पष्ट की गई है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है, सिलसिलाकर कहता है, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विहुलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, गले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इत्यादि महादेवी वर्मा की अगली कविता का शीर्षक है विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात। प्रस्तुत कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने अपने जीवन को वियोग का कमल मानते हुए अपनी विरह वेदना का स्वरूप स्पष्ट किया है। कवयित्री का कहना है कि जिस प्रकार जल में कमल विकसित होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में व्याप्त करुण जल में मेरा जीवन कमल भी विकसित हुआ है। अतः कवयित्री के जीवन का जन्म वेदना के अंचल में ही हुआ है और उसका विकास भी करुणा में ही है। कवयित्री कहती है कि इस करुण भार से युक्त होने के कारण मेरे अश्रु प्रवाह की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि मुझे दिन रात अश्रु प्रवाहित करते बीत जाता है। कवयित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि उसका जीवन आदि से अंत तक स्पष्ट रूप में करुणामय ही है। कवयित्री कह रही हैं कि मेरे हृदय में अश्रुओं का खजाना है और मेरे नेत्र अश्रुओं की सृष्टि करने वाले टकसाल के समान हैं, तथा मेरा यह शरीर रूपी विरह कमल जल की बूंदों से बने हल्के बादल की भांति पल भर में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार जल के चंचल कणों से निर्मित बादल अस्थायी नहीं होते और कुछ क्षण तक आकाश में रहने के उपरांत वह अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे कोमल शरीर की स्थिति भी कुछ क्षणों के लिए है, लेकिन मुझे यह संतोष है कि मेरा जीवन कमल की भांति रहकर विरहावस्था में मलिन नहीं हो रहा है। कवित्री का कहना है कि मेरा जीवन पूर्णतः अश्रुमय हो गया है और मेरे जीवन में बसंत भी आंसू सी ओस की बूंदें बरसाता हुआ आता है और वर्षा भी अश्रुओं की राशि दे जाती है, अर्थात मुझे सर्वत्र वेदना का प्रसार दृष्टिगोचर होता है तथा प्रत्येक वस्तु मुझे अश्रु ही प्रदान करती है। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने जीवन को वियोग का कमल मानते हुए उसे सर्वदा वेदना के अंचल में ही संपोषित माना है। कवित्री अपने जीवन को विरह का कमल मानते हुए कह रही हैं कि समय इस वियोग कमल को पल रूपी आश्रुओं का हार दे जाता है और पवन भी उससे ठंडी सांसें लेता हुआ बातें करता है, अर्थात उसकी पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है। कवित्री अंत में प्रिय को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि यदि तुम मेरे इस जीवन के कमल को अपने आमोद के लिए ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारी मुस्कान रूपी अनुपम प्रभात को देखकर स्व लिख उठेगा, चूँकि कमल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर खिलता है। अतः यह कल्पना की गई कि प्रिय की मुस्कान रूपी प्रभात में कवित्री का जीवन कमल विकसित हो उठेगा। समानता इस कविता में कवित्री ने अपने जीवन में व्याप्त विरह वेदना के स्वरूप का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादन करना चाहा है कि वह इस वेदना को चिरकाल से एक निधि के रूप में संचित किए हुए है और प्रिय की अनुकंपा प्राप्त करने की अभिलाषणी है। इस प्रकार विरह व्यक्ति के कारण यह कविता बहुत अधिक मर्मस्पर्शी हो गई है, पर इसमें रहस्यात्मकता भी है। यहाँ पर स्मरणीय है कि कवित्री ने रूपक आश्रय का स्वरूप लेकर जीवन पर कमल स्वरूप आरोपित किया है और जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप का उल्लेख करते हुए जीव आत्मा व परमात्मा के अभेद संबंध की आकांक्षा भी व्यक्त की है, साथ ही प्रकृति के भी मनोमुग्धकारी दृश्य अंकित किए हैं और संक्षिप्तता पर अधिक ध्यान देने के कारण भाव विस्तार की अधिकता नहीं है, लेकिन संक्षेप में ही भावनाओं का मधुर प्रवाह अक्षुण रखा गया है। इसी प्रकार लक्षादि ठीक शब्द योजना और शब्दों का विशेष अभिप्राय प्रयोग भी इस कविता में है। श्री सुमित्रानंदन पंत ने तो विरह को वरदान मानते हुए कहा है, विरह है अथवा यह वरदान कल्पना में है कसकती वेदना। अश्रु में जीता से सिकता गान है, शून्य आहियों में सुरूले छंद है, मधुर लय का क्या कहीं अवसान है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा की अगली कविता का शीर्षक है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। प्रस्तुत कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने जीवात्मा और परमात्मा के मध्य चिरंतन संबंध की स्थिति प्रतिपादित की है। कवयित्री अपने आराध्य को संबोधित करती हुई कहती हैं कि तुम्हारी वीणा में भी हूँ और उस वीणा से उत्पन्न होने वाली झंकार भी हूँ, तथा जिस समय इस सृष्टि का प्रत्येक कण स्पंदनहीन अवस्था में जड़ पड़ा था उस समय मेरी निद्रा भी स्थिर थी, अर्थात मैं चेतनाहीन अवस्था में थी। साथ ही जिस समय संसार ने पहली बार चेतना की अनुभूति की उस समय मैंने कवित्री ने भी पहली बार जागृति प्राप्त की थी, और अपने जीवन में तुम्हारी कृपा से मुक्त होने के फलस्वरूप जो पदचिन्ह मैं छोड़ती चली जा रही हूँ वह सर्वदा स्थिर रहेंगे, तथा प्रलय के समय में वह मेरे अस्तित्व का ज्ञान कराते रहेंगे। कवित्री का कहना है कि मैं एक ऐसा सांप हूँ जो प्रेम के बंधन में फंसकर वरदान बन गया हो, अर्थात मेरे जीवन में अनेक दुख थे लेकिन प्रिय के बंधन में बंधकर मुझे अमरता के वरदान की प्राप्ति हो गई है। कवित्री कहती है कि मैं नदी का किनारा भी हूँ और किनारों से उन्मुक्त होकर बहने वाली नदी भी हूँ, अर्थात मेरे जीवन की गति नियमबद्ध होते हुए भी मैं उस वेगवती नदी के समान हूँ जो किनारों के बंधन में आए आबद्ध नहीं होती, अतः मेरे जीवन का प्रवाह स्वतंत्र ही है। इस अवतरण में कवित्री ने व्यक्ति की विराट शक्ति की वंदना करते हुए विरोधी गुणों के समावेश के द्वारा व्यक्तित्व की अलौकिकता प्रदर्शित की है, साथ ही इसमें प्रतीकात्मकता भी है, और इस प्रकार वीड़ा निष्क्रिय प्रकृति की प्रतीक है तथा गीत सृजन की हलचल का। कवयित्री कह रही है कि मैं उस प्यासे पपिये के समान हूँ जो अपने नेत्रों में सर्वत्र बादलों को बसाए हुए आकाश की ओर प्यारी दृष्टि से देखता रहता है, अर्थात मैं उस दीपक के समान हूँ जो अपने प्रति प्रेम रखने वाले सलभ पतंगे को अपनी ज्वाला में निष्ठुरतापूर्वक समाप्त कर देता है, अर्थात मैं अपने प्रति मोह रखने वाले संसार के प्रति वैसी ही उपेक्षा दिखाती हूँ जैसी सलभ के प्रति दीपक दिखाता है। कवित्री का कहना है कि मैं उस व्याकुल बुलबुल के समान हूँ जो फूलों के प्रति विशेष प्रेम भाव रखने के कारण उनमें विमुक्त होने पर हृदय में विशेष विरह का अनुभव करती हैं, अर्थात उस छाया के समान हूँ जो शरीर से संबंध रखते हुए भी अपनी चंचलता के कारण उसमें पृथक रहती हैं। कवयित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने प्रिय से उसी प्रकार भिन्न हूँ जिस प्रकार शरीर की छाया शरीर से ही उत्पन्न होने पर भी उससे पृथक रहती हैं। अंत में कवयित्री प्रिय को संबोधित कर कहती है कि यद्यपि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ पर तुम्हारी स्मृति को अपने हृदय में सुरक्षित रखकर अपने आप को सर्वदा सौभाग्यशालिनी समझती हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री ने प्रणय भावना में अलौकिकता का समावेश भी किया है। यहाँ विरोधाभास अलंकार की सहायता से कवित्री ने अपने उक्ति में अनूठा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। कवित्री कह रही है कि मैं वह आग हूँ जो ओस की शीतल बूंदें बरसाती हैं और वियोगाग्नि में जलते हुए भी संसार को करुणा का दान देती हूँ, तथा मेरी आत्मा का विस्तार शून्य की भांति अनंत होते हुए भी समय की सीमा में अभिव्यक्त हो रहा है, अर्थात मेरा जीवन समय कठोर पत्थर की पुलक है और प्रिय के हृदय में मेरा ही प्रतिबिंब है, तथा मैं नीला बादल और स्वर्णम बिजली भी हूँ। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार नीलवर्ण से शोभित बादल और कांतिमय बिजली क्रमशः आधार व आधे के रूप में होते हैं, उसी प्रकार प्रिय या परम ब्रह्म आधार है तथा कवित्री का या साधिका का संपूर्ण व्यक्तित्व उसकी कृपा कुर पर आधारित है। इन पंक्तियों में कवित्री ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपने हृदय की अनूठी भावनाओं का चित्रण किया है। प्रस्तुत अवतरण में कवित्री ने आग से ओस की शीतल बूंदों की वर्षा और पत्थर में पुलक की कल्पना कर विरोधाभास अलंकार की योजना की है। कवित्री कह रहे हैं कि मैं नाश भी हूँ और विकास की धारा भी हूँ, अर्थात मैं कभी नष्ट नहीं हो सकती हूँ और सतत प्रगति भी करती रहती हूँ। कवित्री कहती हैं कि मुझे आत्मत्याग की शक्ति है और घुर्मों का अधिकार भी है, अर्थात जीवन में आत्मत्याग को मूल महत्व प्रदान करने के साथ साथ मैं आसक्ति से रहित नहीं हूँ। कवित्री कह रही हैं कि पीड़ा के तार और उसे झंकृत करने वाला आघात और उत्पन्न होने वाली झंकार भी हूँ, अर्थात जिस प्रकार आघात से वीड़ा के तार एक प्रकार की मधुर झंकार उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार जीवन के संघर्षों के प्रभाव से मैं भी परिश्रम में लीन हो जाती हूँ। कवित्री का कहना है कि मैं मदिरा पीने का प्याला भी हूँ, शराब भी हूँ, मदमस्त भ्रमर भी हूँ और विस्मृति भी हूँ, अर्थात मैं मदिरा पान कर अपनी चिंताओं को त्याग कर भंवरे की भांति संसार के प्रति आकृष्ट होकर अपने जीवन की विगत मधुर स्मृतियों को साकार करने लगती हूँ। कवित्री कह रही हैं कि मैं अधर भी हूँ और अधरों पर मडराने वाली चांदनी के समान उज्ज्वल मुस्कुराहट भी हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री ने व्यक्ति की विराट शक्तियों को स्वर प्रदान किए हैं। निर्जा की यह कविता रहस्यमय ही है और उसमें जीवात्मा और परमात्मा की तल्लीनता अवस्था का चित्रण करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि जिस समय जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस समय वह जीवात्मा मुक्त हो जाती है और अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करती है। इस प्रकार जीवात्मा के इस भाव स्थिति का रम्य चित्रण करने के साथ साथ जीव की जड़ अवस्था की ओर संकेत करते हुए देवी आलोक फैलने पर उसके चेतन होने की ओर संकेत किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि चेतना प्राप्त के पश्चात जीव को ईश्वर की भांति अमर होने का वरदान प्राप्त हो जाता है और उसे अपने जीवन के सभी साप वरदानों में परिवर्तित हो जान पड़ते हैं। इस प्रकार इस कविता में श्रेष्ठ प्रतीकों की योजना भी है और विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तुलनात्मक दृष्टि से महादेवी जी की इस कविता की तुलना महाप्राण निराला की प्रसिद्ध कविता तुम और मैं से की जाती है। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन के लिए तुम और मैं की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष मैं प्रकृति प्रेम जंजीर, तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति, तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र मैं सीता अचला भक्ति, तुम आशा के मधुमास और मैं पिक कल कुंजन तान, तुम मदन पंच सर हस्त और मैं हूँ मुग्धा अनजान, तुम अंबर मैं दिग्वसान, तुम चित्रकार घन पटल श्याम मैं तड़ित तूलिका रचना, तुम रण तांडव उन्माद नृत्य मैं मुखर मधुर नुपुर ध्वनि, तुम नाद वेद ओंकार सार में कवि श्रृंगार शिरोमणि। महादेवी वर्मा की अगली कविता का शीर्षक है रूपसी तेरा घन केश पास। निर्जा की इस कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने वर्षा के नारी के रूप में कल्पना का वर्षाकालीन प्रकृति के अनेक रम्य दृश्य अंकित किए हैं। कवित्री वर्षा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे सुंदरी, तेरे नील कोमल सुगंधित मेघ रूपी काले बाल लहरा रहे हैं और वह बिल्कुल स्वच्छ हैं, अतः क्यों तूने उन बालों को आकाश गंगा की सफ़ेद धारा में स्वच्छ किया है। कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तूने अभी अभी स्नान किया है, क्योंकि तेरे अंग कांप रहे हैं और शरीर में सिहरन है तथा तेरे भीगे हुए बालों से नृत्य सी करती हुई बूंदें धरती पर गिर रही हैं। कवित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि मेघों से वर्षा हो रही है। कवित्री वर्षा की नारी के रूप में कल्पना कर रही है कि तूने बालर रूपी श्यामवर्ण का दुपट्टा धारण किया है और तेरे चंचल आंचल से जुगनुओं के सुनहले फूल झड़ रहे हैं, तथा तेरे निर्मल कटाक्ष से दीपक से प्रज्वलित हो उठते हैं। इसका अर्थ यह है कि आकाश में बिजली चमकती है तो कई दीप एक साथ जल उठते हैं। इन पंक्तियों में मानवीकरण प्रणाली से वर्षा का सुंदर वर्णन किया गया है और कवि की चित्रात्मकता एवं कल्पना भी सराहनीय है। कवित्री वर्षा रूप संबोधित करते हुए ऋतु को संसार की माता मानते हुए कहा है कि तेरा संसार रूपी बालक उदास है, अतः तू उसे अपनी पुलकित गोद में बिठाकर अपने सजल केशों से उसके शरीर पर छाया कर उसे प्रसन्न कर दे और उसका कोमल माथा चूम ले। इन पंक्तियों में कवित्री ने मानवीकरण प्रणाली से प्रकृति वर्णन करते हुए स्वाभाविकता को अक्षुण्ण रखने की ओर भी ध्यान दिया है। निर्जा की इस कविता में वर्षा ऋतु को सुंदरी नायिका के रूप में अंकित करते हुए प्रकृति सौंदर्य की मनोमुग्धकारी छवि चित्रित की गई है और वर्षाकालीन धन विद्युत जुगनु बक पंक्ति आदि विविध प्राकृतिक तत्वों का उपयुक्त उल्लेख भी हुआ है। साथ ही कविता के प्रारंभिक अंश में श्रृंगार रस की और अंतिम पंक्तियों में वात्सल्य की स्वाभाविक योजना भी है। लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, अतः छायावादी कवियों ने सूक्ष्म भावों को उपस्थित करने के लिए तदनुकूल कोमल भाषाएं, लाक्षणिक प्रतीकों व मौलिक चित्र विचित्र उपमानों की सृष्टि भी की। इस प्रकार महादेवी ने भी अपनी काव्य रचनाओं में छायावाद की विभिन्न शैलीगत विशिष्टताओं को अपनाया है और एक ओर तो उन्होंने अपने सुंदर गीतों की रचना की तथा दूसरी ओर चित्रमय वर्ण सामंजस्य से युक्त आकर्षक काल्पनिक चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। देखकर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में मोम सी सीधे बिछा दी थी, इसी अंगार पथ में सकुच सजल खिलती से फाली, अलस मौल श्री डाली डाली बुनते नव प्रवाल कुंजों में, रजत श्याम तारों से जाली शिथिल मधु पवन गिन गिन मधुकण हर श्रृंगार झरते हैं झर झर। इस प्रकार प्रतीक योजना लाक्षणिकता मानवीकरण और चित्रात्मकता द्वारा उन्होंने अपनी कविताओं को छायावादी कला सौष्ठव प्रदान किया है तथा चिर प्रचलित स्थूल उपमानों के स्थान पर सूक्ष्म व मौलिक उपमानों को प्रयुक्त कर अपनी रचनाओं में अनूठी विशुणता भी उत्पन्न कर दी है। उदाहरण के लिए विधु की चांदी की प्याली मादक मकरंद भरी सी, जिसमें उजियाली रातें लूटती घुलती मिश्री सी। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी की कविताओं में छायावादी काव्य का समर रस्त भाव वैभव शिल्प विधान उपलब्ध होता है और समीक्षक उन्हें न केवल छायावादी कवित्रियों में सर्व प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं, अभी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपने काव्य को छायावाद की सौंदर्य चेतना से मंडित करने का प्रयत्न संभव प्रयास किया है। यहीं पर महादेवी वर्मा की कविताओं की व्याख्या एवं विशेषताएं समाप्त होती हैं।